भजन संहिता दो। दूसरा भजन प्रभु के राज्य के युग से संबंधित है। महिमाविंत परमेश्वर के राज्य की महिमा का वो युग जब यीशु मसीह पृथ्वी पर राज्य करेगा। ये मसीह से संबंधित भजन है। भजन दो पद एक और दो। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि वो उसका अभिषिक्त जन है, वो उसका मसीह है। मसीह शब्द का अर्थ है अभिषिक्त किया हुआ। उन्होंने परमेश्वर और परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मसीहा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। भजन दो पद तीन। आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। ये परमेश्वर और यीशु मसीह के विरुद्ध मनुष्य का विद्रोह है। ये सोचना कि वे अपने जीवन से परमेश्वर को निकाल सकते हैं किसी भी समूह या लोगों के लिए सबसे भयंकर बात है। भजन दो पद चार और पांच। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा, तब वो उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मसीह को अस्वीकार कर देने वाले संसार पर ये परमेश्वर का आने वाला दंड है। परमेश्वर घोषणा करता है कि उनके इकट्ठे होकर मसीह के आगमन में बाधा डालने के उपरांत भी वो इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। भजन दो पद छह और सात। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। अब यीशु मसीह जो पवित्र पर्वत पर विराजमान राजा है, उन्होंने ऐसा कहा पर रुकिए, परंतु उसकी बात अभी खत्म नहीं हुई, अब भी वो आगे कुछ कह रहा है। भजन दो पद सात और आठ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। भजन दो पद आठ को बहुत बार गलत संदर्भ में समझ लिया जाता है और ये कई धार्मिक संस्थाओं में मूल वचन माना जाता है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। परंतु ये पद वास्तव में सेवकों के लिए नहीं है। आज की धार्मिक सेवाओं से इसका कोई संबंध नहीं है। ये वचन परमेश्वर के राज्य के युग के लिए है। पिता पुत्र से कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। ये उस महान दिन की बात है जब हमारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी और उसका राज्य आ जाएगा और उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी होगी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है और पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य होगा। यहां पिता अपने पुत्र को राज्य देने की प्रतिज्ञा कर रहा है। वो पूरी पृथ्वी पर राज्य करेगा। तब परमेश्वर उस राज्य के बारे में कहता है। भजन दो पद नौ। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुमार के बर्तन की समान उन्हें चकना चूर कर डालेगा। यीशु थुअतीरा की कलीसिया के नाम अपने संदेश में इस भजन का उपयोग करता है और कहता है, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 26 और 27 पद, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। इस भजन के संदर्भ से स्वर्ग के राज्य की प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है। जब यीशु इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएगा, तब उसका एकमात्र उद्देश्य होगा पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य स्थापित करना, जिससे कि प्रभु के राज्य की सारी भविष्यवाणियां जो पुराने नियम में दी गई है पूरी हो। उस समय धार्मिकता पृथ्वी को ऐसे भर देगी जैसे पानी समुद्र को भर देता है। वो धार्मिकता में, सच्चाई और न्याय में राज्य करेगा, परंतु ये लोहे के समान मजबूत राज्य होगा। इस समय के दौरान शैतान बांधा जाएगा और अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। परमेश्वर के राज्य में वो फिर कलह का कारण न होगा। बस कलह का कारण एक ही होगा, वो कारण मनुष्य के भीतर की अनुवंशिक बुराई। जब मसीह फिर से आएगा, तब उसका काम होगा जाति जाति के लोगों को न्याय के लिए इकट्ठा करें और जैसे चरवाहा भेड़ों से बकरियों को अलग करता है, वैसे ही वो भी उन्हें अलग करे और जिन्हें वो अपने दाहिने हाथ रखेगा उनसे कहेगा। मत्ती 25 अध्याय 34 से 36 पद, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, मत्ती 25 अध्याय 41 से 45 पद, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। वो अपने यहूदी भाइयों की ओर संकेत कर रहा था, इसलिए जाति जाति के लोगों के न्याय का आधार होगा कि उन्होंने प्रभु के भाइयों अर्थात यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया। जो लोग दाहिने हाथ की ओर रखे जाएंगे वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा, तब हम उसके साथ आएंगे। उस समय हम महिमाविंद शरीर में होंगे, हमारी काया पलट जाएगी, जैसे कि पौलुस पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में कहता है, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण होगा। ये क्षण भर में पलक झपकते ही होगा कि नाशमान देह अविनाश को पहन ले और मरणहार देह अमरता को पहन ले। इसलिए पौलुस कहता है, जब हमारा मसीह हमारा जीवन प्रकट होगा, तब हम भी उसके साथ उसकी महिमा में प्रकट होंगे। हम उसके साथ वापस आएंगे कि उसके साथ रहे और हजार वर्ष तक उसके साथ इस पृथ्वी पर राज्य करे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:5 यीशु मसीह के लिए कहता है कि उसने हमसे प्रेम रखा और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और यहां वो आगे कहता है, और हम उसके साथ याजकों के समान राज्य करेंगे। आगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 में उसने आकर उसके दैने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। तब कलीसिया के द्वारा जो नया गीत गाया गया वो ये है, प्रकाशित वाक्य 5:9-10 पद, तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हम परमेश्वर के राज्य में हजार वर्ष के लिए राज्य करने को उसके साथ आएंगे। उसकी कलीसिया इस महिमाविंत रूप में होगी, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को महाक्लेश के काल से होकर गुजरना पड़े और वे बच जाएंगे। ये वे लोग होंगे जिन्होंने मसीह विरोधी की पूजा न की हो, मसीह विरोधी चिन्ह न लिया हो, उनकी रुचि परमेश्वर के लोगों में रही हो, तो उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की आज्ञा मिलेगी। उनके शरीर वैसे ही होंगे जैसे आज हमारे शरीर इस पृथ्वी पर है, परंतु ये पृथ्वी बदल कर नई हो जाएगी, जैसे आदन की वाटिका। जीवन काल फिर से लंबा हो जाएगा और अधर्मी 100 वर्ष के होकर मरेंगे, परंतु धर्मी जन नहीं मरेंगे, वे इस युग में जीवित रहेंगे, दीर्घ आयु पुनस्थापित की जाएगी। लेकिन उस समय मसीह के साथ हमारी स्थिति धार्मिकता लागू करने वाली होगी, शैतान और उसकी ताकतें बांधी जाएगी और मसीह राज्य करेगा, लेकिन हम धार्मिकता लागू करेंगे, जैसे उसने थुअतीरा की कलीसिया से कहा, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वे लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेगा। यहां वो लोहे के समान सख्त राज्य के बारे में कहता है जो यीशु मसीह करेगा। दूसरे शब्दों में मनुष्य भले बनने के लिए बाध्य होंगे। जो बुराई रखेगा वो मिट्टी के बर्तन की तरह बिखर जाएगा, जैसे कुमार का बर्तन लोहे के टुकड़े से मारने पर टूट जाता है। ये राज्य लोहे के समान मजबूत होगा, वहां बलात्कारियों के विरोध में विलाप करती हुई बहने जलूस नहीं निकालेंगी। उस राज्य में न्याय संगत होगा, और जो लोग पार्थिव शरीर पहने होंगे वे न्याय के अधीन रहेंगे। जो लोग बचे रहेंगे और प्रभु के राज्य में बास करेंगे वे इसी शरीर में होंगे, वे संतान भी उत्पन्न कर पाएंगे, और हो सकता है उस समय जनसंख्या विस्फोट हो, क्योंकि पृथ्वी की परिस्थितियां ऐसी अनुकूल होंगी। तथापि हमारे शरीर महिमा में होंगे, हम मसीह के साथ रहेंगे और उसके राज्य काल में उन लोगों पर राज करेंगे जो महाक्लेश के नाश से बच गए होंगे और यीशु के न्याय में क्षमा किए गए होंगे। मैं समझता हूं कि दानियल की पुस्तक में इन्हीं 45 दिनों की बात है, जहां दानियल कहता है, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? उसने कहा, जब नित्य का होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। परंतु धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक पहुंचे। धन्य वे ही होंगे जो न्याय के दिनों से निकलकर वहां तक पहुंचेंगे जब परमेश्वर के महान राज्य में प्रवेश करेंगे। हजार वर्ष के दौरान जब हम आदर्श परिस्थितियों में पुनस्थापित पृथ्वी पर रहेंगे, वो समय महिमा से भरा होगा। हम यीशु के चरणों के पास बैठने के लिए प्रतिवर्ष यरूशलेम को जाया करेंगे और वार्षिक अवकाश पर इकट्ठे होकर आराधना किया करेंगे। पृथ्वी के सब राजा प्रभु के सम्मुख यरूशलेम में इकट्ठा हुआ करेंगे और पृथ्वी पर की अपनी उपज लाया करेंगे। प्रभु ने एक दृष्टांत द्वारा समझाया था कि किसी स्वामी ने अपने सेवकों को तोड़े बांटे थे। उसने एक को 5 तोड़े दिए, जिसने वापस आकर कहा, प्रभु तूने मुझे 5 तोड़े दिए थे, मैंने उनसे व्यापार किया और देख अब 10 है। और प्रभु ने कहा, धन्य है उत्तम और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास के योग्य निकला, इसलिए अब 10 नगरों पर अधिकार रख। प्रभु के आनंद में प्रवेश करो, उसके 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करो और 10 नगरों पर अधिकार रखो। इस प्रकार यीशु के साथ राज्य और शासन करना हमारी इस विश्वास योग्यता पर निर्भर करेगा जो हम परमेश्वर द्वारा दिए गए छोटे छोटे उत्तरदायित्वों के प्रति दिखाते हैं। यीशु ने स्पष्ट कहा था कि यदि तुम छोटे छोटे उत्तरदायित्वों में विश्वास योग्य नहीं ठहरे, तो वो क्यों कर राज्य के बड़े उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपेगा। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हम मसीह के साथ होंगे और राज भी करेंगे। इस 1000 वर्ष के राज्य के अंत में शैतान को खोल दिया जाएगा और वो पृथ्वी पर लोगों को भरमाएगा, परंतु वो आपको भरमा नहीं सकेगा क्योंकि आप पहले ही से महिमाविन शरीर में होंगे। आप जानते हैं शैतान जो कुछ हमारे साथ करता है इस सांसारिक शरीर में करता है। यदि ये मांस का शरीर न होता तो शैतान से मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन ये मेरे मांस के शरीर के कारण है, मेरी शारीरिक इच्छा के कारण है कि मैं ठोकर खाता हूं। लेकिन उस समय मैं महिमा के शरीर में हूंगा, इसलिए लोग कहते हैं, ओह शैतान के द्वारा बहुत से भरमाए गए हैं, क्या मैं भी भरमाया जाऊंगा? नहीं, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं और महिमा के शरीर में हैं, तो किसी भी तरह भरमाए नहीं जाएंगे। लेकिन जो उसके राज्य के युग में धार्मिकता के लिए बाध्य किए गए थे और जिनका जन्म उन 1000 वर्षों में होगा, ये उनकी परख का समय होगा। परमेश्वर अनंत काल के लिए मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था को सिद्ध करने के लिए शैतान के मुक्त किए जाने की सहमति देगा। यीशु के राज्य में मनुष्य द्वारा 1000 वर्ष तक अनुकूल परिस्थितियों में रहने के बाद शैतान एक बड़ी सेना तैयार करने में सफल हो जाएगा कि यीशु के विरोध विद्रोह करे और उसके बाद उसका बहिष्कार करे। यदि आप मेरी बात पर विश्वास करें तो परमेश्वर एक बार सदा के लिए ये सिद्ध कर देगा कि मनुष्य भ्रष्ट ही है। तब कोई उसके न्याय पर अनंत काल तक सवाल न उठा सकेगा। परमेश्वर के न्याय को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर मनुष्य को मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को सिद्ध करे। अतः ये उस 1000 वर्ष के प्रभु के राज्य के संदर्भ में है। मुझसे मांग और मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यीशु राज्य करेगा, जैसे हमारा अंग्रेजी का स्तुति गान भी है, जिसका अर्थ है जहां भी पुत्र होगा हमारी यात्राएं वहां तक होती रहेगी। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े करेगा, तू कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। भजन 2:10। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। यहां वो वास्तव में हमसे बातें कर रहा है जो न्यायी बनकर उसके साथ राज्य करेंगे और धार्मिकता को लागू करेंगे। भजन 2:11-12। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कामते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। अंत में धन्य है अथवा आनंदित है वे जिनका भरोसा उस पर है।